की बाध्यता अपने को पराधीन बनाती है, विवश बनाती है, असमर्थता सताती है, इस संबंध में मरना अच्छा नहीं लगता। और अगर ऐसी प्रतिकूलता आ गई कि कोई मरना ही पसंद करता हो तो वह भी उसके बस में नहीं है। जीना चाहो तो अपनी खुशी से जी न सको, मरना चाहो तो अपनी खुशी से मर न सको। इस प्रकार की पराधीनता मनुष्य के जीवन में आती है, जिसको कि वह मिटा नहीं चाहता है, नहीं करता है। तो पराधीनता हमारी कैसे मिटे, यह एक मौलिक समस्या है। और तीसरी बात है प्रेम पक्ष की। जीवन में रस का घट जाना, नीरसता का भर जाना किसी मनुष्य को पसंद नहीं है। क्या चाहिए अपने को? ऐसा जीवन चाहिए, ऐसा जीवन चाहिए जिसमें किसी प्रकार का दुख न हो। दुख रहित जीवन की मांग है, परम स्वाधीनता की मांग है, सरस जीवन की मांग है। और इन्हीं बातों को लेकर हम सब लोग अपने को साधक स्वीकार करते हैं और सत्संग के प्रकाश में आगे बढ़ना चाहते हैं। भूल क्या हो गई? क्यों हमें दुख को सहन करना पड़ता है? तो इसलिए कि जो अपना होकर सदा के लिए रह नहीं सकता, उसको हमने अपना माना। इसको मानव सेवा संघ की भाषा में कहा जाता है विवेक विरोधी संबंध। जो सदा के लिए अपना होकर नहीं रह सकता, उसको अपना मान लेना बहुत बड़ी भूल है। इसी भूल से हमें संयोग में सुख मालूम होता है तो संयोग के साथ वियोग में बड़ा भारी दुख मिलता है। तो विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी कोई व्यक्ति संयोग जनित सुख को पसंद करेगा, उसे वियोग जनित दुख लेना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है कि उससे वह बच सके। तो करना क्या चाहिए? विवेक के प्रकाश में जीवन की घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। और यदि अपने को यह बात स्पष्ट रूप से मालूम हो जाती है कि जो सदा के लिए अपने साथ नहीं रह सकता, उसको अपना मानना भूल है, ये बात अगर मालूम हो जाती है तो इस भूल का निवारण करना चाहिए, अर्थात इसका त्याग करना चाहिए। तो जानी हुई भूल का त्याग करना विकास का एक महामंत्र है, बहुत बड़ी बात है। आपने और दूसरी साधन प्रणालियों के बारे में भी सुना होगा, ऐसे साधन करो, ऐसे साधन करो। स्वामी जी महाराज ने साधन करने की बात नहीं कही। स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग करो, तो सत्संग करने से साधन अपने आप होगा, अर्थात अपनी जानी हुई भूल का त्याग करो तो निर्भूल जीवन में शांति की अभिव्यक्ति होगी, निर्भूल जीवन में दुखों की निवृत्ति होगी। तो इस तरह से अपने लोगों को बहुत ही सामान्य ढंग से जीवन का आरंभ करना है। निज विवेक के प्रकाश में अपना अध्ययन करना, यह मानव सेवा संघ का पहला ग्रुप है, पहला नियम है। अपने आप को अपने विवेक के प्रकाश में देखिए और विवेक के प्रकाश में देखकर अपनी जो भूल मालूम होती हो उसको छोड़िए। ऐसी साधना दुर्बल सबल धनवान धनहीन और बहुत पढ़ा लिखा और बेपढ़ा लिखा सबके लिए ये संभव है। इसमें बाहरी योग्यता और सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है। विवेक का प्रकाश मनुष्य के साथ जन्मजात है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन प्रदान किया, उन्होंने विवेक का प्रकाश आरंभ से दिया ही है। उसी विवेक के प्रकाश में अपना अपने को देखना और की हुई भूल को न दोहराना बहुत स्वाभाविक बात अपने लिए हो सकती है। तो ये एक उपाय है जहाँ से हम जीवन में उत्थान आरंभ करते हैं। तो दुख रहित जीवन मिले इसके लिए अपने को इस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। पराधीनता का नाश कैसे हो, तो है तो बहुत बड़ी बात। मुझ में मैंने अनेक प्रकार के संकल्पों को रखा, तो संकल्पों के परिणाम से मुझे शरीर धारण करना पड़ा। प्रकृति के विधान ने उदारता पूर्वक मुझे शरीरधारी बनाया, इसलिए कि जिन संकल्पों को लेकर मुझे जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है, उन संकल्पों का त्याग करके निःसंकल्प होकर जन्म मरण की बाध्यता को मिटा सकें। तो जगह जगह पर ऐसा वचन है महाराज जी का कि भाई अब सोच के देखो तो सही। आज हम लोग बैठे हैं सब और अपनी अपनी उम्र का हिसाब लगा लो, किसी का कितना बीता, किसी का कितना बीता, किसी का कितना बीता, और फिर ऐसा सोचिए कि जिन संकल्पों को रखने से मुझे जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ा, तो जितनी बड़ी जिंदगी हमने बिताई उसमें कमाया क्या? क्या जिन उन संकल्पों का त्याग हमने कर दिया, आज क्या स्वयं अपना जीवन निःसंकल्प हो गया? ऐसा पूछिए। और लगता है कि अभी तक निःसंकल्पता नहीं आई है तो फिर लंबी जिंदगी बिता करके अर्थ क्या निकला? अर्थ यही निकला कि संकल्पों को लेकर पैदा हुए थे, उन्हीं संकल्पों को रखे रहेंगे, शरीर में से प्राण शक्ति का ह्रास हो जाएगा, शरीर का नाश हो जाएगा और वह चक्र ज्यों का त्यों चलता रहेगा। शरीरों के नाश से केवल स्थूल शरीर का नाश होता है, सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता, मन का नाश नहीं होता, और जो अतृप्त इच्छाएं हैं, अपूर्ण संकल्प हैं, वे मृतक प्राणी के साथ रह जाते हैं स्थूल शरीर के नाश होने के बाद भी। फिर क्या होता है कि उन्हीं संकल्पों से प्रेरित होकर पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। यह विचार ऐसे तो अपनी परंपरा में हम लोगों को पहले से ही मालूम है। एक बिल्कुल भिन्न परंपरा के विचारक के साहित्य में पढ़ा मैंने, खलील जिब्रान, एक बड़े दार्शनिक हो गए, उनके देश का नाम अब मैं भूल गई हूँ, तो उनके साहित्य में पढ़ा मैंने विदाई की घड़ी में, अर्थात शरीर त्याग करने के समय वे सत्संगी नगर निवासियों से बात कर रहे थे, तो बात करते करते कहने लगे कि देखो भाई, तो अगर हमने यहाँ पर संसार में रह के, दुनिया में रह के अपना काम पूरा कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शांति में हम रहेंगे, और अपना काम हमने पूरा नहीं किया है तो मेरी इच्छा शक्ति पुनः मिट्टी पानी इकट्ठा करेगी और फिर हम यहाँ आ जाएंगे। मुझे इतना आश्चर्य हुआ, मैं सोचा करती थी कि पुनर्जन्म की बात केवल अपनी ही परंपरा में है, ऐसा मैं सोचती थी, लेकिन उस साहित्य को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि कोई भी विचारक, कोई भी दार्शनिक जिसको जीवन के सत्य का कुछ अनुभव हुआ है वो इस बात को जानता है। तो आज इस संध्या काल की इस बैठक में इसी विषय पर विचार कर लीजिए पूरा। हम लोगों ने पैदा होने के बाद से बहुत योग्यता भी संपादित किया, बहुत प्रकार के काम भी किए, बहुत परिश्रम भी किया, कुछ सुख भी पाया, कुछ दुख भी पाया, और आए थे बिल्कुल अकेले नंग धड़ंग दुनिया में पैदा हुए थे, और बहुत कुछ सामान अपने पास अब इकट्ठा हो गया है, बहुत मित्र हो गए हैं, बहुत परिचित हो गए हैं, बहुत संबंधी हो गए हैं और अब धीरे 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 ढलान की ओर चल रहे हैं। अब ये दशा हो रही है, अब क्या है, अब कैसे दिखाई देता है? तो जैसे उस एक लेखक की बात मैं दोहराती हूँ, कभी कभी याद आ जाता है मुझे, आई एम इन द पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ माय लाइफ एंड नाउ ऑनवर्ड्स देयर आर डाउन स्लोप्स ऑन एवरी साइड। तो डाउन स्लोप्स एवरी साइड दिखाई दे रहा है, अब सब तरफ से गिरावट आरंभ हो गई है। अब भी सोच विचार कर देखिए, दुनिया में इतना हमने जो भी कुछ किया, सब करने धरने का परिणाम अब अंतिम घड़ी में क्या मिलेगा? अगर संकल्पों का त्याग नहीं किया, अगर निःसंकल्प नहीं हुए, निर्मम निष्काम नहीं हुए, तो क्या वही दशा नहीं रही कि जिन संकल्पों को लेकर पैदा हुए थे उन्हीं संकल्पों को लेकर शरीर का नाश हो जाएगा, तो उस संकल्प से प्रेरित होकर के फिर शरीर धारण करना पड़ेगा और इसी क्रम को पुनः पुनः दोहराना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? नहीं? अब तो ऐसे देखने से बड़ी धूमधाम लगती है कि हम बड़े कर्मठ हैं, हम बड़े सेवक हैं, हम बड़े गुणवान हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े श्रीमान हैं, ऐसे तो बाहर से बहुत धूमधाम लगती है। लेकिन सच्चाई की दृष्टि से देखा जाए तो इन सारे वैभव में और धूमधाम के भीतर सचमुच में कुछ अपने को उपलब्ध हुआ क्या? अगर ऐसा विचार करेंगे तो लगता है कि निःसंकल्पता नहीं आई, शरीर धारण करने की आवश्यकता खत्म नहीं हुई, शरीर के माध्यम से संसार का सुख भोगने की वासना का अंत नहीं हुआ, तो क्या हुआ फिर? जी कुछ नहीं हुआ। और दूसरी एक और बात है, स्वामी जी महाराज के मुख से भी मैंने सुना है और दूसरे संत के मुख से भी सुना है कि केवल इतना ही नहीं है कि निःसंकल्पता नहीं आने से संकल्पों का त्याग करके शरीर और संसार से संबंध नहीं तोड़ने से फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर सब प्रकार के सुख दुख का भोग करना पड़ेगा, फिर से मरना पड़ेगा, इतना ही नहीं है, इसके भीतर एक और रहस्य है। और वो रहस्य ये है कि अनुभवी संतजन ये बताते हैं कि इस बार जो हम लोगों को परिस्थितियां मिली, जैसा शरीर मिला, जितनी समझ बूझ मिली, जितनी चेतना मिली, ये सब ले करके अगर निर्मम निष्काम होना, निःसंकल्प होना और जन्म मरण की बाध्यता को तोड़कर स्वाधीन होना, इस दिशा में अगर हमने कदम आगे नहीं बढ़ाया तो आगे इतनी सामर्थ्य भी नहीं मिलेगी, इतनी चेतना भी नहीं रहेगी, इतनी परिस्थितियां भी नहीं मिलेंगी, घट जाती है। महाराज जी ने बारंबार इस वाक्य को दोहराया है और उनके साहित्य में भी लिखा है कि प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं करोगे तो परिस्थिति बदल जाएगी, प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं करोगे तो सामर्थ्य घट जाएगी। और ऐसे ही चर्चा हो रही थी एक बार बलरामपुर में और मैं यूं ही बोल रही थी, सत्संग सप्ताह हो रहा था, तो महाराज जी के साथ एक दूसरे संत भी बैठे थे, सुन रहे थे। जब मेरा बोलना खत्म हो गया, बहुत प्रसन्न हो गए, बेटा खूब बोलो, खूब कहो, खूब बताओ, ऐसे करके प्यार करने लगे, आशीर्वाद देने लगे और उसके बाद कहने लगे कि बात बिल्कुल सही है, अगर आज इस वर्तमान में जितनी चेतना है, जितनी शक्ति है, उसका सदुपयोग करके अविनाशी स्वाधीन जीवन की ओर आगे नहीं बढ़ा जाएगा तो दम लग जाएगी, दम, ऐसे कहा उन्होंने। अब उनकी अपनी भाषा है, उसका अर्थ ये था कि जड़ता बढ़ जाएगी, मानवता घट जाएगी, पशुता बढ़ जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। और भी एक एक दार्शनिक प्रणाली जो महाविद्यालय में पढ़ाई जाती थी हमारे समय में, उसमें भी इस तरह की बात आई थी। तो ऐसे भी یہ بات جگتی ہے اپنے کو کہ اپنے پاس سچ مچ اپنا کر کے کچھ نہیں ہے. وویک کا پرکاش ہے وہ بھی اس انت پرکاشوان میں سے آ رہا ہے. ہردے میں پریم کا بھاؤ ہے تو وہ پریم کا بھاؤ بھی ہم لوگوں نے کسی فیکٹری میں اپجایا نہیں ہے, دکانوں سے خریدا نہیں ہے, اپنا بنایا ہوا نہیں ہے. وہ بھی جو سنسار کا بنانے والا ہے, وہ بھی جو سرشتی کا مالک ہے, اس پریم سوروپ پرماتما میں سے ہی یہ پریم کا بھاؤ بھی اپنے پاس آیا. اور کچھ کرنے کی سامرتھیہ اپنے پاس ہے تو وہ بھی انت سامرتھیوان پرماتما میں سے ہی اپنے کو ملا ہے. تو وویک کا پرکاش ایک مولک تتو ہے جو ہر ویکتی کے ساتھ ہے. پریم کا بھاؤ ایک اویناشی تتو ہے جو ہر ویکتتو میں ودیمان ہے. اور کچھ نہ کچھ کرنے کی سامرتھیہ سب کے پاس ہے, وہ بھی انت سامرتھیوان کا ہی ہے. تو سچ پوچھئے تو بھوتک تتووں سے بنے ہوئے شریروں میں بھی ہم لوگوں کا اپنا کر کے کچھ نہیں ہے, یہ سب ملا ہوا ہے. اور وویک کا پرکاش, پریم کا بھاو اور سامرتھیہ, یہ سب بھی جیون داتا اور جنم داتا کا دیا ہی ہوا ہے. تو کبھی کبھی میرے دھیان میں آتا ہے کہ سچ مچ جنہوں نے سرشٹی بنائی اور جنہوں نے مجھے بنایا, ان کے دیے ہوئے تتووں کا سدوپیوگ کر کے اپنا دکھ مٹا لینا, اپنی پرادھینتا مٹا لینا, اپنا ادیش پورن کر لینا, یہ سب اپنے لوگوں کے لیے بہت ضروری بات ہے. نہیں تو داتا نے دیا اور اس پر میرا دھیان نہیں گیا. داتا نے دیا میری سب سمسیاؤں کا سمادھان کرنے کے لیے اور میں نے لاپرواہی کی تو دیا ہوا اوسر نکل گیا, سمسیا میری جیسے کہ تیسے رہ گئی. تو اسی کے لیے مہاراج جی نے کہا کہ اگر پراپت سامرتھیہ کا سدوپیوگ نہیں کرو گے تو سامرتھیہ گھٹ جائے گی. تو بات مجھ کو ٹھیک لگتی ہے. ان سنت نے ایسے ہی کہا دم لگ جائے گی, تو اس کا ارتھ میں نے ایسے ہی نکالا. اس لیے ستسنگ میں شامل ہو کر ہم سب لوگ سوامی جی مہاراج کے وچن کو سن رہے ہیں اور بہت اچھی اچھی باتیں سامنے آتی ہیں جن کو سن کر, جن کو سمجھ کر بہت آرام لگتا ہے بھیتر. اسی پرکار سے یہ چرچا جب پوری ہو جائے اور راتری کے سمے بھوجن آدی سب جو کام ضروری ہیں سب ختم کر کے آپ اپنی اپنی جگہ پر وشرام کے لیے بیٹھیں, تو ایک بار سوچ کر کے دیکھیے تو صحیح کہ یہ جو جیون کی یاترا ہم نے پوری کی, 60 کی 70 کی 80 کی 90 کی 100 برس کی, اور 60 سے نیچے بھی سمجھ لو, تھوڑا بھی سمجھ لو, بیشی بھی سمجھ لو, جس ماترا میں بھی ہم نے جیون کی یاترا پوری کی, اس کرم کے بیچ میں اگر یہ ادیش پورا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا. بہت سجگتا آتی ہے اس بات پر دھیان جانے سے, ایک دم سے چیتنا آتی ہے کہ وسو تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اچھاؤں کا, کامناؤں کا ناش کرنا, ممتا کو مٹانا, سب طرح کے سنکلپوں سے نہ سنکلپ ہونا اپنے کو آوشیک معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. اور بڑے دکھ کی بات ہے, آپ بھائی بہن تو اپنا حال آپ جانیں, لیکن میں اپنا حال سوئم جانتی ہوں کہ ابھی بھی کوئی بات سامنے آ جائے تو سنکلپ پورتی کے لیے انکولتا ہو پرستھتی میں تو پورتی پر دھیان پہلے جاتا ہے, نوتی پر پیچھے جاتا ہے. جی اگر انکولتا ہے تو, انکولتا نہ ہو تو بات دوسری ہے. تو بھلے جان کے سہارے اپنے کو سمجھا کر کے اور شانت کر لیں, نہیں چھوڑو ایسے سنکلپ کو رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ تو سنکلپ دماغ میں رہے گا تو شانت نہیں رہنے دے گا, بھگوان کے یاد نہیں آنے دے گا, تو سمجھا لو تو اچھی بات ہے, بری نہیں ہے. لیکن اگر سنکلپ پورتی کی پرستھتی دکھ رہی ہے تو پہلے اس بات پر دھیان جاتا ہے کہ سنکلپ پورا ہو جائے, और फिर बाद में सोच समझ करके याद आता है कि भाई एक संकल्प की पूर्ति तो न जाने कितने संकल्पों को जन्म देगी, तो भाई उसकी पूर्ति के महत्व को छोड़ो। तो निवृत्ति की बात पीछे आती है, पूर्ति की बात पहले आती है। बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा घाटा है। इसकी जगह पर यदि हम लोग सावधान रहें, इस दिशा में स्वामी जी महाराज ने बहुत सहज बना दिया कि ज्यादा इसके छानबीन में मत लगे रहो, हर समय इसी के पीछे पड़े रहो, सोचते रहो तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो उन्होंने सहज बना दिया, कहा कि परिवार में रहना हो अथवा समाज में रहना हो अथवा आश्रमों में रहना हो, चाहे कहीं भी रहो, तो अगर निकटवर्ती जन समुदाय के साथ मिलकर रहने में संकल्प उठते हैं तो विचार कर लो कि कोई संकल्प ऐसा है जो हमारे व्यक्तिगत सुख से संबंध रखने वाला है, और कोई संकल्प ऐसा है जो सामूहिक हित से संबंध रखने वाला है। इतना तो मालूम हो जाएगा। तो अगर अपने व्यक्तिगत सुख का संकल्प है तो उसकी पूर्ति के लिए उसका समर्थन कभी नहीं करना चाहिए साधक को। यहाँ से हमारा कदम आरंभ होगा। अब देखिए, भूखे नंगे रहने की बात नहीं है कि खाना छोड़ दो, कि कपड़ा छोड़ दो, कि घर में रहना छोड़ दो, इससे काम नहीं बनेगा। लेकिन जब से सवेरा हुआ, सो करके जगे और प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़े, तो विविध प्रकार के संकल्प आते हैं। साधक के जीवन में बुरे संकल्पों का तो कोई स्थान ही नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचा दें, कि किसी का कुछ बिगाड़ दें, ऐसी बात साधक के जीवन में आती ही नहीं है। जिसको अपना कल्याण अभीष्ट है वो कैसे किसी को हानि पहुंचाने को सोचेगा, तो सोचेगा ही नहीं। लेकिन जहाँ तक हानि नहीं पहुंचाने वाले संकल्प हैं, ऐसे संकल्पों की पूर्ति का सुख भी साधक को उसके लक्ष्य से दूर कर देता है। तुम्हारा जी ने बताया कि भाई सामूहिक हित का संकल्प हो तो उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करो, हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो कोई चिंता की बात नहीं है। और व्यक्तिगत सुख सम्मान के लिए किसी संकल्प को लेकर चलोगे तो उस संकल्प में तुम बंध जाओगे। तो कहाँ से आरंभ करना पड़ेगा? संकल्पों का त्याग तो हम करें नहीं, कैसे कैसे हमारे संकल्प पूरे हो सकते हैं इस फेर में पड़े रहे, काम करते समय, व्यवहार करते समय, परिस्थितियों को देखते समय इस बात पर ध्यान रहे। और सुबह शाम आधे आधे घंटे के लिए चुपचाप बैठकर समाधि का आनंद लेना चाहें तो कभी संभव है? नहीं होता है, होता ही नहीं है, किसी प्रकार होगा ही नहीं। इसलिए मानव सेवा संघ ने संपूर्ण जीवन को बदलने का उपाय आरंभ से ही बताया। महाराज जी ने शुरू ही करने के लिए कहा कि भाई देखो, अपने संकल्पों को रख कर ही जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ा, और फिर उन्हीं संकल्पों की पूर्ति का सुख पसंद करते रहोगे तो उन्हीं संकल्पों को लेकर मरना पड़ेगा। तो वही क्रम चलता रहेगा, जन्म मरण की बाध्यता समाप्त हो नहीं सकती है। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात क्या है? जीवन में रस की अभिव्यक्ति, तो सरसता घट गई क्यों? तो जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से संतुष्टि नहीं होती, जिसको अपना माना उससे कुछ चाहने से असंतोष रहता है। एक जगह पर महाराज जी ने ऐसा वाक्य लिखा है कि चाहने वाले को चाहना पशुता है। एक सज्जन यह वाक्य लेकर मेरे पास आए, कहने लगे कि बहन जी, महाराज जी के इस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है कि चाहने वाले को चाहना पशुता है, ये लिखा है। तो फिर मैंने उनसे बातचीत की, उनको बताया अब व्यक्तियों से संबंध हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं भाई, तो अपने में अधूरापन लगता है, ऐसा लगता है कि शरीर को लेकर संसार में रहना है तो दो चार दस बीस से संबंध बनाए बिना, उनका सहयोग लिए बिना निर्वाह होगा नहीं। तो संबंध बनाया ही मैंने इस उद्देश्य को लेकर के कि जिसको संबंध बनाएंगे उससे कुछ ले करके अपना निर्वाह करेंगे, तो सहमत हो गया ना। अच्छा, अब जिससे आपने संबंध जोड़ा वो भी हमारी ही तरह चाह से और कामना से, इच्छाओं से प्रेरित है, तो वो चाहता है कि आपसे संबंध बनाएंगे तो आप उसकी जरूरत पूरी करेंगे, और आप सोचते हैं कि उससे संबंध बनाएंगे तो उससे कुछ लेंगे तो हमारा काम चलेगा, तो दोनों ही फंसे। और मेरी ही तरह जो अधूरेपन से पीड़ित है, मेरी ही तरह जो कामनाओं से वासनाओं से प्रेरित है, वो क्या हमारी पूर्ति कर सकता है? जी नहीं कर सकता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि चाहने वाले को चाहना पशुता है। बहुत बहुत तीखी बात है और सजग साधकों के दिल को हिलाने वाली बात है। सजगता रहनी चाहिए इस प्रकार की, तो इसलिए निरस्ता का नाश ही नहीं होता, क्योंकि हम आशाएं करते रहते हैं और निकटवर्ती प्रिय कुटुंबी जन, निकटवर्ती समाज के लोग उन आशाओं की पूर्ति में असमर्थ प्रमाणित होते हैं, तो कभी क्रोध आ गया, कभी क्षोभ आ गया, कभी दीनता आ गई, कभी परेशानी हो गई, और इन सब विकारों के फल स्वरूप हृदय का जो रस है वो सूखता चला जाता है, हृदय शुष्क और कठोर बनता जाता है, तकलीफ बढ़ती जाती है, शांति घटती जाती है, स्थिरता घटती जाती है, और इतनी अधिक गतिशीलता भीतरी और बाहरी सभी शक्तियों में आ जाती है कि व्यक्ति बेचैन हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने सलाह दी हम लोगों को कि भाई तुम इस प्रकार से विचार करो कि ये सारी सृष्टि मिल करके तुम्हारी जो जरूरत है उसको पूरी करने में असमर्थ है। तुम्हारी जरूरत क्या है कि तुमको चाहिए अनंत रस, तुमको ऐसा रस रूप जीवन चाहिए कि जिस रस का कभी नाश न हो, कभी घटे नहीं, ऐसा रस चाहिए। तो ऐसा रस संसार नहीं दे सकता, जो खुद ही निरसता से पीड़ित है वो कहाँ तक तुमको सरसता दे सकेगा, जो खुद ही कामनाओं से प्रेरित है वो कहाँ तक तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। इसलिए संसार से उसकी आशा मत करो, तब किससे करें भाई, कौन कर सकता है? अपने आप में तो बहुत ही निरसता सता रही है। विश्वासी जन के लिए परमात्मा कहकर संबोधित किया गया कि वह जो नित्य तत्व है, अविनाशी तत्व है, वह जो परमात्मा है, वही रस का भंडार है, वही रस का अगाध सागर है, और उसी से विमुख हो जाने के कारण जीवन में सरस निरसता सता रही है। ये बात और दिनों के बाद मेरी समझ में आई, और दिनों के बाद निरसता क्यों है। तो मैं पहली पहल जब अपनी दशा का परिचय मुझे मिलने लगा तो मैं बनाने वाले पर बहुत नाराज रहती थी कि तुमने कैसा बनाया है कि किसी प्रकार के भीतर से संतुष्टि होती ही नहीं है। कितना भी पहन लो और कैसे भी खा लो और कितना भी खेलो और कितना भी मनोरंजन का उपाय करो, किसी तरह से संतुष्टि होती ही नहीं है। छोटी उम्र की बात है, सखी सहेलियों के साथ झूला झूल रही हूँ, गुड़िया खेल रही हूँ, और उसमें भी जितना मजा आए थोड़ी देर में भीतर से ऐसा लगे कि बस हो गया, इतना ही मजा है, इसके आगे तो नहीं है। तो एकदम धरती पर पांव रोक करके, झूला को रोक के बीच में, और भीतर भीतर मैं सोचने लगती कि पूरा आनंद तो नहीं आया, बस झूला में इतना ही सुख है, इससे ज्यादा तो है नहीं, और कहाँ है इससे ज्यादा, और कहाँ है।
پتہ ہی نہیں کہاں ہے, تو پھر بنانے والے پر کروپ کہ تم نے کیسا بنایا کہ کسی بھی اپائے سے پرسنتا ہوتی ہی نہیں ہے, مزہ آتا ہی نہیں ہے. تو یہ نیرستا کی جو اپنی گھڑی ہے اس کا پریچے سبھی بھائی بہنوں کو ہوتا ہے. سوامی جی مہاراج کے پاس آنے کے بعد مجھے اس پرشن کا اتر ملا کہ بھائی جو اپنا نہیں ہے, جو سدا کے لیے اپنے ساتھ رہ نہیں سکتا ہے, اس کی سنگتی سے تم رس چاہتے ہو کبھی ہوگا نہیں. سمسیا سپشٹ ہو گئی, اپنی بھول کا پتہ چل گیا. اپائے کیا ہے؟ تو اپائے یہ ہے کہ جو اپنا نہیں ہے, اپنا ہو کر رہ سکتا نہیں ہے, اس سے سرستا کی آشا مت کرو. پھر تو بنا دیکھے بنا جانے رس سوروپ پرماتما ودیمان ہے, اس سے بچھڑ جانے کے کارن, اس کو بھول جانے کے کارن, اس سے بمکھ ہو جانے کے کارن بھیتر بھیتر یہ ہردے کی پیاس جو ہے وہ ستاتی رہتی ہے. رس کی ابھیویکتی کے بنا نیرستا کا ناش ہوتا نہیں ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کرنا یہ چاہیے کہ جو سرشتی دکھلائی دے رہی ہے اس کی تو سیوا کرو, اور سیوا کے بدلے میں اس سے کچھ چاہو مت. اور جو پرماتما سننے میں آیا, دیکھنے میں نہیں آیا, جاننے میں نہیں آیا, ہے تو صحیح لیکن اپنے پاس اس کو دیکھنے کے لیے جو پریت بھری درشٹی چاہیے وہ درشٹی نہیں ہے, اس لیے اپستھت ہوتے ہوئے بھی وہ دکھتا نہیں ہے. تو نہیں دکھتا ہے تو اس کی چنتا مت کرو, انوبھوی جنوں کی بانی کو سویکار کرو, گرو کے واکیہ کو سویکار کرو, وید کے واکیہ کو سویکار کرو کہ وہ ہے اور رس سوروپ وہی ہے, اور وہی رس کا سروت ہے, وہی جیون کا آدھار ہے. تو جب اس کو اپنا ماننا سویکار کرو تو اس سے تمہارے بھیتر رس کی ابھیویکتی ہوگی. اور جب پرماتما کے سمبندھ سے جیون میں رس کی ابھیویکتی ہوتی ہے تب نیرستا کا ناش ہوتا ہے. تو نیرستا کا ناش کیسے ہو اس کا اپائے انہوں نے بتایا, رس سوروپ پرماتما کو اپنا مانگ, وہی اپنا ہے اور کوئی اپنا ہو نہیں سکتا. پرادھینتا کا ناش کیسے ہو اس کا اپائے بتایا کہ اپنے کو نرمم نشکام اور نسنکلپ بنا لو. اور سرو دکھوں کی نوتی کیسے ہو اس کا اپائے بتایا کہ ناشوان کے سنیوگ جنت سکھ کا تیاگ کرو. تو دکھ بھی مٹ جائے گا, پرادھینتا بھی مٹ جائے گی, نیرستا بھی مٹ جائے گی. اور ایسا کہہ رہی ہے مہاراج کہ جیسے دوسروں کے کام آئے بنا کرنے کا راگ مٹتا نہیں ہے, اچھا ہوئے بنا شانتی ملتی نہیں ہے, اور پربھو کو اپنا مانے بنا پریم رس کی ابھیویکتی ہوتی نہیں ہے. تو یہ ایسے منتر ہیں کہ کسی بھی یوگ میں, کسی بھی دیش میں, کسی بھی مذہب کے ماننے والے ویکتی کو سفلتا دے سکتے ہیں. اور اگر ان باتوں کو گرہن نہ کیا جائے, ان کے انوسار اپنے کو چلایا نہ جائے, تو کسی اور بھی ودھان سے یہ باتیں پوری ہو جائیں تو سمبھو نہیں ہے. تو کہاں کہاں آدمی اٹکتا رہتا ہے, کس کس بھی ودھان میں پھنسا رہتا ہے, اور جیون کی سمسیا جو کہ کیوں کھڑی رہ جاتی ہے, اور گھڑیاں جلدی جلدی نکل جاتی ہیں اور کام بہ جاتا ہے شیر. تو ہم لوگوں کو ایسی اسفلتا نہ دیکھنی پڑے اس بات کے لیے سوامی جی مہاراج کو بہت چنتا تھی. آخری کھڑوں میں جب ہم پرارتھنا کرتے ان سے کہ مہاراج وشرام لیجئے, وشرام لیجئے, اب تکلیف مت کیجئے, اب مت بولیے, تو اتینت ادھیر ہو کر بالکل ویاکل ہو کر گدگد کنٹھ سے, بھرے ہوئے کنٹھ سے کہہ دیتے کہ میرے چاروں اور کھڑے ہوئے متروں میں سے ایک بھی پرادھین دکھائی دیتا ہے تو میں وشرام کرتی ہوں. تو ان سنت کی سدبھاونا ہم لوگوں کے ساتھ ہے, اور یہی اوسر ہے, یہی ورتمان ہے, اسی میں نکل چلے تو بات بن جائے, اور نہیں تو جو ہو رہا ہے اس کو نہیں رہا. और शांत हो जाएं।